जो कि विशेष रूप से इस ग्रंथ का जो वैष्णव के निकट अध्ययन नहीं किए होंगे उनके समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े दिग्गज पंडित भी हो सकते हैं, भागवत के वक्ता भी हो सकते हैं, इनके लिए सिद्धांतों को जानना उनके लिए भी बड़ा भारी क्षति है, दुर्लभ। शुद्ध गुरु की सेवा करने वाले और पूर्व जन्म की सुकृति से इन सब तत्वों को हृदयंगम किया जा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे सिद्धांत देवताओं के लिए भी दुर्लभ। नारद जी के हृदय गुहा में ये सब चीजें हैं वो बतला रहे हैं, इसलिए नारद जी सब जगत के गुरु। तो कल उन्होंने बतलाया, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसी लीला माधुरी की नहीं सुनेगा तो बोलो। नारद जी ने बतलाया कुछ लोग ये कहते हैं भगवान ने गोपियों को मोहित कर दिया, बावरी उनको बना दिया। नारद जी कहते हैं कि वो कहते हैं तो कहें किंतु विचार यह ठीक नहीं है, गोपियों ने ही कृष्ण को मोहित कर दिया और उन पर नचा दिया, कृष्ण ने नहीं। जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं। हम ब्रज में जब गए तो देखा कि गोपियों ने और गोपों ने उनको मोहित कर दिया है, उनको सुध बुध नहीं है कि मैं भगवान हूँ, भगवत्ता भी एकदम भुला गया। मैं गया तो बच्चों के साथ जब खेल रहे थे मधुमंगल के कल की कथा सुनाई, उनके साथ में खेल रहे थे, या जब रास हो रहा था तो नारद जी यदि जाते तो उनसे बातचीत कृष्ण करते कि नहीं करते? नारद जी वहां पर प्रवेश कर सकते थे, रास प्रवेश ही नहीं करते, तो वहां पर यदि जाते तो बातचीत करने का मौका मिल क्या? मैं कोई खड़े रहते परिकर करते हैं निकल जाओ यहाँ, खबरदार मत आना, बातचीत नहीं करते। और जिस समय में गोचारण करते थे सखाओं के साथ और उनका जूठा खा रहे थे, तो नारद जी यदि कृष्ण से बोलना चाहते तो कृष्ण उनसे बातचीत करते कि नहीं? नहीं करते, डर के मारे जाते नहीं वहां। थोड़ी सी ऐश्वर्य युक्त लीला की थी, केसी को मारा और मार करके जरा थोड़े से पृथक सखाओं से थे और गोपियां तो वहां पर थी नहीं, निर्जन उनको पाया और बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके और सब निवेदन उनको किया। तो वो आपकी बड़ी विचित्र लीलाएं हमने देखी, मैं तो मुक्त हो गया। तो हमारी इच्छा है जो कंस को मारता हुआ भी आपको देखूं, और कंस के जो परिकर हैं चारू मूर्ति की तैयारी को ऐरावत सोनाती सुबल्यान को और जो दैत्य दानव हैं जरासंध और उसके अनुगत दंतवक्त्र कालजवन जरासंध इत्यादि सबको मरता हुआ आपके हाथों से देखूं, और देखेंगे द्वारका में आप महिषियों के साथ में कितना 16108 महिषियों के साथ में आप वहाँ लीलाएं कर रहे हैं, और वहाँ पर रुक्मी को आपने वध किया और सब जो लीलाएं की वो भी आप दर्शन कर रहे हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप करोड़ों करोड़ों लड़कों के साथ में नातियों के साथ में ये सब लीलाएं कर रहे हैं, और पांडव बड़े विपत्ति में पड़े हुए हैं उनको आप उद्धार करेंगे। महाभारत के युद्ध में जितने भी राजा के रूप में असुर लोग जन्म लिए हैं वो सबका आप सफाया, पृथ्वी का भाव है उभर है। और अंत में मैं आपकी द्वारका की और भी कुछ जो औचित्य लीलाएं हैं उसको व्यक्त नहीं किया, मौसल लीला इत्यादि काफी करते। आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से देवताओं के कार्य के लिए जगत में आया पढ़ाए, सकृत उनके तरफ में देखने लगे, सब उनको कहीं स्मरण मारी सभी काम कर, तब उनको चिंता आई, भगवत्ता की याद आई, उनको याद ही नहीं रही थी। इसलिए नारद जी कहते मुझे अनुभव है एक तो मैं डर के मारे पहले नहीं गया, ये लीला में कहीं विघ्न हो जाएगी, और अब गया भी तो डरते डरते गया और चलाकी के तुराई के साथ में सौ स्तुति करते हुए, तब मैंने यह बात नहीं कर दिया। इसलिए यह बात ठीक है गोपियों के और गोपों के संग नहीं अपनी भगवत्ता को भी भूल गए और साधारण मनुष्य की भांति। दूसरी बात, ब्रह्मा और उद्धव दोनों ने प्रार्थना की थी कि गोपियों की चरण धूलि को पाने के लिए ब्रज में तिल लता गुल्म हम हो जाए और उनकी चरण धूलि पड़े। दोनों ने माना तो दोनों बराबर हुए। अजय नहीं आजा मत समझो, ब्रह्मा जी ने गोपियों की चरण धूलि किस लिए चाहिए थी कि मैं नित्य परिकर होकर के भगवान का दास हो जाऊं, उनकी दासता को सेवा को पाने के लिए वैकुंठ में जाकर उनकी सेवा मुझे मिले, बस इसी के लिए क्या गोपियों की कृपा होने से यह सहजी शिक्षित हो जाते हैं ये काम। और उद्धव जी ने, अरे उद्धव जी तो भगवान के दास थे ही, परिकर नित्य परिकर है, इसलिए कोई दुर्लभ वस्तु के लिए उन्होंने ऐसी चाह। जिन गोपियों ने अपने, उन्होंने कहा कतमांग रजो भी जेकम, ब्रह्मा जी ने किसी एक ब्रज में रहने वाले लोगों की चरण धूलि मुझे मिल जाए, किसी एक व्यक्ति कोई भी, कौन कोई भी ब्रजवासी में से कोई भी हो, दास सखा कोई भी हो, माता पिता किसी की चरण धूलि नहीं हुआ तो जिम्मेदारी की भी चरण धूलि मिल जाए। किंतु उद्धव जी ने ऐसा नहीं कहा, जिन लोगों ने अपने पूरे धर्म को, आर्य धर्म माने पति धर्म को सबको जलांजलि दे करके छोड़ करके और आपकी सेवा की और आप उनके पति भूत हैं, उनकी चरण धूलि के लिए, इसलिए उद्धव जी से उन गोपियों की अर्थात ललिता विशाखा और स्मृति राधिका की, क्यों बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मधुस्मृता, ये मसला है। मैं गोपियों की चरण धूलि चाहती हूँ। कौन गोपियां? नंद ब्रज और बतलाया आगे आप कहो। उन्होंने ये कहा कि नारायण सियोग श्री लक्ष्मी जी भी जिस चीज को नहीं प्राप्त कर सकी, उन गोपियों का ऐसा सौभाग्य हुआ रात, तो जिन्होंने रात किया था उन गोपियों की चरण धूलि चाहिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं, वो तो किसी भी एक ब्रज बनाने वाले व्यक्ति की चरण धूलि को उन्होंने मांगा था और उन्होंने पर सेवा की भावना से जिससे अपना, इसलिए उद्धव जी उनसे बहुत आगे थे। तीसरी बात, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं और इंद्र इत्यादि देवताओं के भी प्रपितामह और उनके गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तुम्हारा घर चाहते अरे तो तुम्हें घर सुनो, आगे भी आज तो बतलाया कि ब्रह्मा जी इंद्र के भी प्रभुताम हैं और हम संप्रदाय के गुरु हैं, वेदों के वक्ता हैं। ये ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मा जी से बातचीत नहीं की भगवान ने और वो सौ स्तुति करते रहे और अंत में चले गए, उन पर उसने बातचीत भी नहीं की। और इंद्र से बातचीत थोड़ी सी थी, क्या बात किया, आइंदे से ऐसा मत करना, अब जाओ जाकर के अब वहां पर किसको पकड़ो अपने, अब तुम्हें कोई डर है की बात नहीं, इतनी बात। और तुम मत में अभिमान हमारे पास ना और हमारे भक्तों को साधारण रूप में मत देखना, यदि भक्तों के प्रति किसी भी अवज्ञा हुई तो मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा, ये सब सिखलाया। वो भी बात उनसे किस लिए थी, इसलिए थी जो सुरभि को साथ लेकर के, मैया को लेकर के आए थे जिसकी कृष्ण सेवा करते हैं, उनके अस्त्र व्याय प्रणागत होकर के आने से इनसे बातचीत नहीं करते, ब्रह्मा के लिए आए थे इनसे बातचीत नहीं, और ये उनकी सूर्य को लेकर के आए थे इसलिए इनसे बात। और सबसे बड़ी बात, गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लिया था, उनके ऊपर तब वज्र गिराए और उनके ऊपर में वर्षा की, किंतु इनका तृण भी भंग नहीं किया, कुछ भी इनका एक लताओं के उनके दो पत्ते भी कट करके नहीं गिराते हैं, उनको खरोंचती नहीं मालूम हुई। उनको ये हुआ जो कृष्ण के कानी उंगली के ऊपर में जो बैठे हुए हैं कृष्ण ने धारण किए हुए हैं, और गोप गोपियों की मैं ऊपर से रक्षक बना हुआ हूँ, भगवान ने मैं रक्षक का पद दे दिया है, मैं इनकी सेवा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए इतने आनंदित हुए कि वो खरोच भी इनको ऐसी खुजलाहट सी लगती है जैसे कोई खुजलाहट, इसलिए बड़े प्रसन्न है। इसलिए कहते हैं कि उनके आश्रय करने से आज ब्रह्मा जी से बहुत नीचे की व्यक्ति इंद्र आज भगवान के कुछ कृपा पात्र बन गए। और दो चार बात, एक आदमी है कोई आया, मैं उसे बातचीत नहीं किया, बिगड़ गया उसके अपराध को देखकर, और कोई आदमी अपराध किया है क्यों किया, थोड़ा सा कान मल दिया या थप्पड़ दे दिया, समझे जैसे उनका क्रोध उतर गया और जिसे बातचीत नहीं की उसका क्रोध ही नहीं उतरा, तो इसलिए क्रोध उतर जाना अच्छा है, उसे स्नेह आ जाएगा, तो फिर वो कहेंगे जाओ इसको खाना दे दो, प्रसाद दे दो, खिला दो अच्छी तरह मारने के बाद, और जिसे बातचीत नहीं करेंगे उसे बातचीत नहीं, बहुत दिनों तक जब तक क्रोध नहीं उतरेगा। तो ब्रह्मा जी से तो बातचीत नहीं की, आप उनसे थोड़ा सा उन दोनों का आश्रय लेने की वजह से ऊपर, किंतु इसे आप लोग मत समझ लेने, ये ब्रह्मा जी से भी इंद्र बड़े हैं, ये मत समझ लेना, कृपा की कृपा तो थी, एक आदमी अपनी गृहिणी से बिगड़ गया और उनसे बातचीत नहीं किया, और एक नौकर है उसको कान पकड़ करके थप्पड़ दे करके उसे खबरदार ऐसा मत करना, तो गृहिणी से वो बड़ा हो गया नौकर, ऐसा मत समझना। ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, तत्व को जानने वाले हैं,
ब्रह्मा जी के भंडार समझे स्वामाले के पहले ब्रह्मा जी वक्तव्य है, तो भंडरा को वाल वाल को सुधार समझ उसके पहले क्षमा मांग लेते।
अरे भाई उनको पता कि मैं तो उनका पुत्र हूँ, आज ना तो कल वो करेंगे जाएंगे कहा, पुत्र का अभिमान है ना, इसलिए देखते हैं कि आज तो रोज की मैं तो अपने घर से आज से मना इसलिए ब्रह्मा जी को छोटा मत समझ लेना, इंद्र जी जितने भी हैं इंद्र जी मुक्ति इंद्र की नहीं होगी, और इसके बाद में ये मुक्ति लाभ करके ब्रह्मा जी भगवान का सेवक बन करके चले जाएंगे आगे, इसलिए बड़े तो नहीं है किंतु थोड़ी सी कृपा का प्रभाव है, इसलिए कृपा का। एक बात और इसमें है, जिसका आप आश्रय कर रहे हैं भगवान को भजन करने के लिए, वो आश्रय कैसा है, किस जाति का है, भगवान की कैसी कृपा को पाया उस पर निर्भर करता है। हमको नौकरी लेना है तो उनके ऑफिस में एक कर्मी है उसके पास दिया हमारी नौकरी साहब से कह देना लगा, और उनकी गृहिणी के पास में कोई कह दिया मैया जरा मैं खाना पीना हमारा नहीं हो रहा है, मैं बहुत ये कर रही मैया जरा उनसे कह दीजिए, अच्छा अगर ठीक है मैं कह दूँ, तो चपरासी की बात लगेगी कि उनकी बात लगेगी, चपरासी डरेगा और वो इच्छा करे तो उनको कान पकड़ करके करा देंगे जैसे तैसे करा लेंगे, वो कहेंगे नहीं करूँगा तो करना पड़ेगा आपको, तो वो करा लेंगे, कितना अधिकार है। ऐसे भक्तों में जो जितना ही उच्च अधिकारी भक्त है उसका आश्रय धारण करने से भगवान की कृपा उतनी जल्दी मिलती है, इसलिए राधिकार दासी यदि हो अभिमान शीघ्र मिले तभी दोष लगता। एक आदमी ब्रह्मा का आश्रय दिया उसमें हो सकता है कि भगवान की कृपा धर्म खुद विलंब हो जाएगा, और यदि राधिका जी के पास में पहुंच गए उनकी दासियों की दासियों के पास में और उनके शरणागत हो गए तो क्या हो गए। इसलिए जितने प्रकार के आश्रय हैं उन्हें सबसे बड़ा आश्रय, और गोपियों को आश्रय करने के लिए सबसे जो बड़े आश्रय तीन जो कल बतलाया था, भक्तों में हरिदास वर्य जबसे से गिर जाए दया के भंडार है, और दूसरी जिनके ऊपर में कृष्ण ने भार दिया जब ब्रज में तुम प्रवेश किसी को करा सकती हो, हमसे मिलन करा सकती हो, वो है ये गिरिराज प्रसाद गंगा देवी, और तीसरी है कि हमारे भक्तों को कृपा करने के लिए तुम यमुना जी के रूप में पानी के रूप में प्रदर्शित करो और सब पर कृपा करो, वो है यमुना। तीनों का यदि आश्रय कोई ले ले या तीनों से किसी एक का कोई आश्रय ले तो ब्रज का भाव जल्दी से सहज रूप में और नहीं तो बहुत विलंब हो जाए। ये सब साधन इसमें सब कल हम लोगों ने किसी विशेष रूप से हमने व्यक्त किया है। यदि भजन करने की लालसा हो तब तो फिर ऐसे जैसा ये बतला रहे हैं ऐसे हम लोग को प्रवेश करना पड़ेगा। आने तक खेल कूद करके ऐसी जगत के चीजों में ही मत रह गए तो बस गुल्ला मनुष्य जीवन बहुत चला जाएगा। इसलिए इन सब चीजों में प्रवेश करने के लिए ऐसे भाव भी होते हैं। इसलिए श्रवण जो है यही साधन है। परीक्षित महाराज को उन्होंने श्रवण कराया तो श्रवण करने से भगवान को पा गए। ऐसे श्रवण करने से साथ ही साथ हमारे हृदय की भावनाएं बन जाती और उस भाव के आस्वादन करने के लिए कृष्ण आते हैं और उसी को प्रतिकूल होता है। यह भाव ही मंत्र और औषधि के समान है जो कृष्ण को भी आता है। ये भाव कहां से पैदा हो यदि उसका हृदय संस्कृत है अर्थात शोधन किया हुआ है मलों से रहित है कामनाओं से रहित है तब होगा। इसको आगे ये साधन के रूप में बतलाएंगे। तो कह रहे हैं यह अब थोड़ा सा विस्तार से कह रहे हैं हमने कल को ऐसे ही संक्षेप में बतला दिया। सतगोत्रों के शक्ति सदा प्रेम भरे नेतु जयागतम देश सुतम सुमंतम विदिन नमस्तम नवदिक्षते। ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण की महा अद्भुत प्रेम पूर्ण आसक्ति है। जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रति कृष्ण की आसक्ति है प्रेम पूर्वक आसक्ति महा अद्भुत उनके बिना रह नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा जी जो स्तुति भी वो नहीं सुना उन्होंने क्या ब्रह्मा कह रहे हैं। एक भी स्तुति पर ध्यान नहीं दिया और लंबे चौड़े 14 अध्याय में बहुत से श्लोकों में उनकी स्तुति की तो ध्यान ही नहीं दीजिए क्या ब्रह्मा कह रहे हैं कौन है क्या है। और बच्चे कह रहे हैं चौमा देखो चौमा आगे चौमा मैंने चौमा इसलिए उस स्थान का नाम भी हो गया चौमा। तो बच्चे उनको चिढ़ाया ये कहां से आ गया चौमा चार मतलब सदपाद पद्म पाद पद्म गति मातृशान संभावित संभाजित नो असक्यते क्षण तैमो असौखिल गोष्ठ नागरो वन्यौषधि मंत्र समय। अरे ब्रह्मा की तो बात में क्या है ब्रह्मा की तो ऐसे ही बात भी मित्र भी नहीं है और ऐसे भाव भी उन्नत भाव उनके नहीं है। ब्रजवासी लोग कृष्ण को मन मंत्र और औषधि से पचित कर देते हैं। हमने सुना था कि आज शाम में जो मंत्र जानने वाले हैं यदि पुरुष गए तो उनको मंत्र से उनको फेड़ा बना देते हैं। फेड़ा समझते हैं भेड़ बकरी से तो फेड़ बना देते हैं और उनको साथ में रखते हैं। कभी पुरुष बना देते हैं या स्त्री बना लेते हैं क्योंकि साथ में फेड़ बना करते रहते ऐसा मंत्र जानते हैं। और सुनते हैं कभी कभी हमारे पास में ऐसे सब लोग आते हैं बिना जी कैसा ये मंत्र कर दिया है कि उसका एकदम पीछे पीछे चलता है उसकी बात करते तो कुछ मानता नहीं एकदम पच्चीस फुट हो गया है जैसे इच्छा तैसे ही करा लेता वो सब एकदम विचार नहीं करता। ऐसा होता है सम्मोहन मंत्र होता है उसके द्वारा मोहित कर दिया जाता है। तो मैंने ब्रजवासी क्या सम्मोहन मंत्र या औषधि जानते हैं वो तंत्र एक होता है साथ बच्चन नाम ने देखा था उसकी सिद्धि करने से कोई टीलक लगा करके और इसमें मंत्र सिद्धि कर ले तो उसको जो देखे जा रहा तो बहुत तरह के सम्मोहन मंत्र हैं। तो ये नजर क्या मंत्र जानते हैं जो कृष्ण को वो वशीभूत कर रखे हैं कि गोष्ठ नागर श्री कृष्ण को वशीभूत और मुभूत करते हैं तो वो वो ब्रह्मा से बात क्या करेंगे, हमसे बातचीत नहीं कर सकते। मैं भी जब जाऊं समय में बातचीत, एक समय में गया और देखा जो यशोदा जी कृष्ण को डांट रही है, पर ब्रह्म को डांट रही है और कहीं इसमें गोदी कभी नहीं लूंगी और स्तन नहीं पान कर। और कृष्ण लड़ करके रो करके मिट्टी में गिर करके इधर से इधर मीडिया खा रहे हैं, लोट पोट कर रहे हैं। जब तक उन्होंने नहीं है तब तक लोट पोट करते रहे। कृष्ण उनको चढ़ना चाहता है, उनको नहीं लेती है गोदी में। कहीं कौन सी तपस्या है यशोदा ने, मैया तुम्हें कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया? किंतु उस समय में कृष्ण से बातचीत कर सके या यशोदा जी से, दूर से देख रहे हैं बस, उनकी लीला में हम न हुए इसलिए बातचीत नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से एक समय केवल इसी लीला में बस वही शेषी पद के बाद में उन्होंने बातचीत किया और इसके बाद में बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे यदि भक्त जो मैं हम लोग से यदि एक क्षण भी कृष्ण बातचीत नहीं करना चाहते हम लोगों से, क्यों नहीं? इसलिए तुमसे वशीभूत हैं, प्रेमरस का आस्वादन करने वाले हैं और हम लोगों में ऐसा प्रेम है नहीं। कृष्ण को दर्शन करने से हम लोगों को कोई इतना भाव नहीं आए और ब्रजवासियों को आंख से आंसू आने लगे, अस्त्र शास्त्र की विकार हो जाएगा, लेकिन क्या क्या स्थिति उनकी बन जाएगी। कहते हैं कि वो जो कालाती कालाती ज्ञान संपत्ति भाजन अस्मात्ज पूज्य पादा समंता वैकुंठस्य उत्तरानंद पूर्व भाजामेशम जावदानम अपूज्या। ब्रज की जो स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, या वहां के जो भी ब्रजवासी हैं, ज्ञान संपत्ति के अथाह भंडार हैं। गोपियां जो हैं या वहां के पशु पक्षी भी हैं, ज्ञान के अथाह भंडार हैं और हम लोग उनके शिष्य होने योग्य नहीं है। नाग और ब्रह्मा इत्यादि जितने भी उनके शिष्य होने योग्य नहीं है उन गोपियों को। ऐसा कि कालातीत बैकुंठ वासी है और द्वारका वासियों के भी पर पूज्य है ये। ऐसा मानिए गोपियां कुछ भी नहीं जानती हैं, अज्ञानी हैं, किंतु कृष्ण को भी मट्ठा खिला दिया, भोग खिला दिया, उनके ऊपर भी जो उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं ऐसे कृष्ण को बना दिया। कृष्ण भी बगल झांकने लगते हैं, उनको पटपुतली बना देना ये गोपियों के लिए संभव है, और कोई उनको पटपुतली नहीं बना सकता। जरा वो द्वितीय ले आना तो द्वितीय ला रहे थे। ब्रह्मा जी कहेंगे ना, नारद जी कहेंगे कभी ना, वैकुंठ का कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्षद है, लक्ष्मी जी भी नारायण को कहेंगे जरा द्वितीय ले आना तो कहने का साथ किसी में नहीं है। द्वारका में कोई कहेगा सत्यभामा रुक्मिणी और उद्धव उद्धव तो सब सोचते कहेंगे जरा जुटी तो ले आना नहीं कर। हम समझते हैं कि राधा जी की दासियां भी ललिता विशा था, जरा राधा जी की जुटी ले आना तो भाई तो उद्धव करके लाएंगे मनाएंगे हजार बार मनाएंगे। राधा जी कहेंगे हमारा वो पैर का आवता मिट गया है, जरा इसको साफ सुथरा करके और इसमें अवता पहना दो, अवता लगा दो। बस वो क्या करेंगे, बड़े प्रेम से अपनी गोदी में ले लिया उनका पैर और यह भी रचा दिया। ऐसी सेवा में अपने को कृतार्थ मानते हैं भगवान, ऐसा कहां भी है ऐसा कुछ नहीं। तो कृष्ण को मंत्र और औषधि से वशीभूत नहीं किया जा सकता है किस चीज के द्वारा? कृष्ण भाव के आस्वादक हैं, भाव का आस्वादन करते हैं और किसके मंत्र और औषधि से उनको वशीभूत किया जा सकता है। द्रौपदी जी से पूछा हस्तिनापुर की रानियों ने, द्वारका की रानियों ने द्रौपदी जी से पूछा कि हम तो 16108 है और आप अकेले हैं, तो आपके पति हैं पांच और पांचों को मुट्ठी में बंद कर रखा है, जो पति है वही करते हैं और हम 16,108 एक एक स्वरूपवती गुणवती शीलवती सब प्रकार की योग्य है और कृष्ण हमको चुन भी नहीं सुना। हम लोग हजारों रहेंगे और चिंता करते हैं कहां की बस गोपी उनके सामने उनको पकड़ करके अंकल कहते हैं कि अरे ललिते तू कहां है, ऐसे ऐसे रोने लगते हैं और हम लोग को पूछते हैं तो तुमने अपने पत्नियों को कैसे परिशुभूत किया जरा बताओ तो कोई मंत्र से किया या जादू से किया या सोना कर दिया या कोई औषध खिला दी ऐसा हो गया। अरे नहीं खबरदारी ये मत करना, पति को वशीभूत करने के लिए किसी व्यक्ति को वशीभूत करते हैं मंत्र और औषधि का व्यवहार कर तो हो सकता है कि वो पागल हो जाए, तो यह खबरदार मत करना उसे वशीभूत नहीं हुआ और शत्रुता बढ़ जाएगी जीवन नष्ट हो जाए। मैं उनसे उठने के पहले उठती हूँ और सोने के बाद में उनको खिला करके तब अपने हाथों से परोसती हूँ और रसोई किसी को मैंने नहीं बनाने दी और परमिशन तो एकदम किसी से नहीं कर अपने हाथों से रसोई बना करके अपने हाथों से उनको परमिशन करता हूँ, पंखा चलती हूँ, सुंदर पानी देती हूँ, हाथ खुलाती हूँ, इसके बाद में और तंबू जीविका इत्यादि जो कुछ देना है उनको खुला करके पैर दबा करके जब विश्राम करने लगते हैं करने आते हैं अपना बर्तन सर्तन ये सब यदि चाकर यहाँ के वन में तो चाकर नौकर तो है नहीं वहाँ पर खुद साफ कर करके तब अंत में देते हैं। इसलिए हमारे बर्तन किस प्रकार का वो तो उसमें भाव है, जिसका भाव जितना ही उन्नत होगा उतना ही उसी के प्रतिभूत भगवान बनेंगे और जिसके अंदर में भाव नहीं है कर्कश भाव है कठोर स्वभाव है भगवान प्रतिभूत नहीं है। इसलिए भगवान को भावावास्वादन लोलुप है यदि सखाओं के साथ है और कोई वृंदा जी ने इशारा कर दिया जिस श्रीमती जी आई हैं और सूर्य पूजा के लिए जा रही हैं बस इतना इशारा कर दिया सूर्य के तरफ इशारा कर दिया और फूल ले लिया बस सूर्य के तरफ में दे दिया वृंदा जी कृष्ण समझ गए ये यहाँ के लिए इंगित कर रहे हैं इसी का नाम संकेत है कहा सूर्य स्थान है सूर्य सूर्य को बस सूर्य के तरफ इशारा कर समझिए वहाँ। अब उन्होंने क्या किया है सखाओं से का जो गोचारण कर रहे हैं किसी जोग माया को आश्रय कर लिया सखाओं को भी मोहित कर दिया कि मैं अभी तुरंत पानी पी करके आ रहा हूँ पानी पी करके आ रहा हूँ ये कुंड में तुम लोग यहाँ पर जरा गलिया देखना कहीं घर घर गाय ना हो जाए बस ऐसा उनको दे करके चकमा और थक करके बस झट उनको लेकर के चले इनके लिए गोपियों के लिए तो इसलिए सख से बढ़ करके वो है ना सकरस का भाव है बहुत उत्तम है ये नार्ग इत्यादि को भी बातचीत नहीं करने उस भाव में भक्त होने पर किंतु उन सखाओं को भी भूल जाते हैं और उनको छोड़कर छट पटाते हैं उनसे भी नहीं रात में सो रहे हैं चिंता क्या है कैसे गोदी माता पिता को माता की गोदी में लेकर के सो रही है बच्चे निकल माता जी को सी जा रहे इसलिए बात्सल्य भाव से भी इसलिए सोर भाव है जिनका जितना ही विशाल और उत्तम भाव है उसके द्वारा भगवान ऐसे ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं या भावी महाऔषधि है। तेषां सदा संतिलपि चपापाच्या दीनन्दगोपस्य कुमारमीनम् श्रीमुनापितन्तो बहुसेवमाना सदा महत्यै एव नयन्ति कालम्। ब्रजवासियों की सुख में जो आसक्ति है उसका कौन वर्णन करता है। कृष्ण की भी आसक्ति गोपियों में है माता में कृष्ण की आसक्ति है और माता जी की कृष्ण में आसक्ति है दोनों में किसकी आसक्ति बड़ी है कृष्ण को प्यार करती हैं यशोदा जी और कृष्ण अपने मैया को प्यार करते हैं इन दोनों को प्यारों को अलग अलग फल में फल रखो तो कौन धार होगा यशोदा माँ का प्यार कृष्ण और गोपियों को जो प्यार करते हैं और गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं गोपियों के प्यार का पलरा कृष्ण का प्यार बिखरा हुआ है, बहुमुखी है, है ना? जो भक्त है सबको उनको आदर करना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण का स्नेह बच गया। चंद्रावली में है, राधिका जी भी है, 16,000 सखियां हैं, उनमें भी है, मैया में भी है, सखा में है, गायों में है, सब जगह बिखरा हुआ है, और उस गोपियों का प्रेम बस एक और उनका प्रेम बिखर नहीं है, इसलिए उनका प्रेम का पलड़ा अधिक है। इसलिए क्यों उनको भगवान नहीं जानती है, यदि भगवान जानती तो उनका प्रेम बिखर जाता। तो ध्यान से सुनो, अरे कृष्ण भगवान है, नारायण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, वामन भी भगवान है, भगवान के 24 अवतार हैं, हजारों हजारों अवतार, सभी भगवान है, सबने बढ़ गया ना, किंतु गोपियों का प्रेम नंदनंदन में है, भगवान में नहीं है। नंदनंदन भगवान है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो भगवान पर विश्वास ही नहीं करती है नंदनंदन, बस एक में उनकी इच्छा है नंदनंदन। यदि भगवत बुद्धि हो जाती तो उनका प्रेम बिखर जाता, ऐश्वर्य से दब जाता, किंतु उनका नंदनंदन के अतिरिक्त, यशोदा नंदन के अतिरिक्त, ब्रजेंद्र सनई के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं जाता बुद्ध में। हम कृष्ण को अभी भजन भी करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, किंतु भगवत भाव पहले आएगा इसके बाद में, और उनको हजार बार कहा जाए जैसे ये भगवान है तो वो हजार बार भगवान को प्रत्याख्यान कर, किसी ने कहा ये भगवान है तो वो कहेंगे भगवान कैसे हो गया, कब से हमारा स्तन का दूध नहीं देने से बिगड़ जाता है, हंडिया फोड़ देता है, जिसको क्रोध है, काम है, झूठ बोलता है, चोरी करके खाता है, भूख और प्यास को रोक नहीं सकता, ये भगवान कहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं। और भीष्म पितामह क्या कहेंगे, उद्धव और नंद, उद्धव जी क्या कहेंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे, नखल गोपिका नंदनो अयम शिखन का अर्थितो विश्वगुप्त, जो सुधा भी चलिए क्या, नहीं 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 जसुदा देवी कलर आ रही है, जो सुधा और देवी कलर के ये कौन है, विश्वगुप्त विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से स्वयं विष्णु जी आए, सहस्त्र का शिक्षा जिनके सहस्त्र मुख है, सहस्त्र पैर है, चारों तरफ देखते हैं, बिना पैर के सुनते हैं चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुंह का खाते हैं, सबको ध्यान करते हैं, जिसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में निकला है वो विष्णु ही है। कभी भी हमारे भीष्म पितामह जी उनको नंदनंदन कहेंगे नहीं, कब देवकी नंदन भी नहीं मानते, वो क्या कहेंगे, ये विराट कर्म है, उनको विश्वास ही नहीं। इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह जी ने बाण मारा तो सोचा कि इनको बाण कहां से लगेगा, ये जीत में ये सब मूर्ख लोग देख रहे हैं, ये बाण लग रहा है, यदि उनको आग नहीं जला सकती, पानी भी जा नहीं सकता, शस्त्र उन्हें काट नहीं सकते तो हमारा बाण लग सकता है, ये जीत में सुधार, बस उन्होंने खूब बाण मारा और जी गुस्सा में कार्य करते उन्होंने अशुभ समाप्त प्रवेश कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण को नंदनंदन नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, हम लोगों में कभी तत्व ज्ञान नहीं, अच्छी तरह से भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, जितना भी प्रेम होता जाएगा कृष्ण या कृष्ण इत्यादि भगवान से नीचे होते चले जाएंगे, ये साधारण नर बालक हो जाएंगे, किसी के प्रियतम बन जाएंगे, किसी के सखा बन जाएंगे, किसी के प्रियतम बनेंगे, किसी के पुत्र बन जाएंगे, भगवान का भाव जितना ही दूर होगा उतना ही प्रेम का विकास होगा और उसी प्रेम के द्वारा ये प्रतीत होगा। और ये भगवान ही ऐसा समझ करके प्रेम करने से भगवान प्रसन्न तो होंगे किंतु पति भी तो प्रेम करने हैं, द्वारका में अयोध्या में और बैकुंठ में यह भाव पर चुने, द्वारका में कुछ कम, राम में भी कुछ कम, बैकुंठ में अधिक। इसलिए कहते हैं कि वो नंदनंदन रूप से समझ करके उनकी जो सेवा करती है, सेवा में भी कहते हैं कि तृप्ति नहीं होती, गोपियों को कृष्ण चलाते कभी भी तृप्ति नहीं होती, सब समय अपित रहती है और ज्ञानी तो नहीं, ब्रह्मा इत्यादि भी नारद जी का भी ज्ञान यहाँ पर नहीं जा सकता है, इतनी अधिक ज्ञानी है, किंतु ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, यही उनमें माधुर्य है। एक दादू है, दादू समझ गए, दादू है, और एक उनका नाती है, नाती 5 वर्ष का है, और दादू जी है 100 वर्ष के पुराने, तो दोनों बैठ रहे हैं, बातचीत बने, दादू जी बच्चे के बच्चे बन गए हैं और वो भी वैसा ही बन गया है, और दोनों में हंसी मजाक इधर उधर, वो ऐसे बन जाते हैं दादू उस बच्चे के समान बन जाते हैं, तो फिर की नहीं होगी, पिताजी तो डांट देंगे लड़के को, किंतु वो नहीं जाते हैं, ठीक वैसा ही बन करके, और जैसा कुछ समझते नहीं है, जानते ही नहीं है, ऐसे एकदम भोरे भारे वो बन जाते हैं, ठीक वैसे भगवान जी ने उनके सामने भोरे भारे बन जाते हैं। तो ये गोपियां भी, गोप भी इतने ज्ञानी होने पर भी कोटि कोटि ब्रह्मा तपस्या करें, कोटि कोटि जन्म तक कभी उनके चरण की धूल को नहीं पाएंगे, और वो गोपियां थोड़ी भारी बन जाते हैं। तो ये कालातीत ब्रजवासी काल के अतीत हैं, ब्रह्मा जी काल के अधीन हैं, हम लोगों के सर्वथा पूजनीय है, और कुछ बात क्या द्वारका की महिषियों की भी ये लोग पूजनीय है ब्रजवासी। प्रतिदिन किलमोहिताश्चे कैयसभ्यामोहि भगवानिति सत्यमेव गच्छामहे विस्मृता एतदेव सर्वे अनुस्मार अनुस्मारिता किमपि चित्तम् हो कथञ्चित्। ओ मैं ब्रिज में गया, मैं इन बातों को विश्वास नहीं करता था, कि मैं ब्रिज में जब गया और देखा जैसे ये गोपी और ब्रजवासियों के द्वारा अत्यंत मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, और किसी भी काम काज को ध्यान नहीं है कि किसी एक रथ में आए हैं। यदि मैं ब्रज में नहीं जाता तो हमारा यह मुंह समय भी तब यही कहता कि कृष्ण ने इनको मोहित कर रखा अपनी माया से, ब्रह्मा जी को मोहित कृष्ण ने किया ना, बलदेव जी को भी मोहित कर दिया था कृष्ण ने, और ऐसे कृष्ण को मोहित किसने कर दिया, मोहित कर दिया। कथम कथम मती प्राज्ञेन अक्रूरेण बलादिव प्रजान माधुरी नीतो जगुना हितम स्थिता। अब कहते हैं ये कुछ किसने प्रश्न किया है, तो फिर ऐसे जहां पर जिस कृष्ण का प्रेम है, जो सबसे सुख का स्थान है, उसको छोड़कर के मथुरा में क्यों आए और फिर द्वारका क्यों चले गए, यहाँ पर सब प्रकार का सुख है, आनंद है, वहीं पर आदमी निवास करता है, और जहां दुख है वहां नहीं रहता, इसलिए कृष्ण ब्रज को छोड़ जब दिया तो उससे श्रेष्ठ मालूम होता है कि मथुरा द्वारका ही, इसलिए छोड़ करते चले। नारद जी कहते हैं ऐसा मत कभी निशन तय करना, कहते हैं कि कृष्ण की जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु अक्रूर ने इधर उधर बहाना बतला करके चलाकी चतुराई करके छल कपट के साथ में वो ले गए मथुरा, और मथुरा से फिर वो चले गए, अपने मन के स्वभाव की स्थिति से नहीं गए, जाने का कुछ कारण हो गया जो बात नहीं करते गए, तो जब जाना पड़ा इसलिए वही स्थान श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। एक आदमी अपने घर पर रहता है, अपने माता पिता के साथ में रहता है, पढ़ा लिखा, उन्हें बीए पास किया, और उसको कलकत्ते में नौकरी मिली मथुरा कारण, अब वहां पर उसको 2000 रुपया महीना मिल गया, तो वहां पर चला गया कलकत्ते में, घर मिलना बड़ा कठिन है किराया का, एक फ्लैट लिया उसने, कम से कम तो महीने में उसका 800-900 या 1000 रुपया उसका खर्च होता है, और उस फ्लैट में भी छोटे से घर हैं, गर्मी लगती है, हवा भी ठीक पास नहीं होता है, बड़े कष्ट कष्ट से उसी घर में रसोई बनाते हैं, उसी घर में रहते हैं, किसी प्रकार से कटी जाते हैं, जंगल कष्ट से रहते हैं, और वहां जाते हैं कलकत्ते में रहते हैं, एक बरस उसमें 2-4 दिन की छुट्टी के लिए या 5 दिन के लिए छुट्टी आते हैं, तो कहां पर अधिक बात किया, घर में ना वहां कलकत्ते में बात किया, हमारा नौकरी कर, तो घर प्यारा है ना, वो स्थान प्यारा है। अरे भाई घर के लिए ही तो, बाल बच्चों के लिए तो वहां पर इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है, किंतु विशेष कारण से वहां पर नौकरी नहीं, हमको पैसा नहीं मिलने से हमारे बाल बच्चों को और स्त्री और बच्चे को हम अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते, इसलिए कष्ट सह करके भी वहां पर है। इसी प्रकार से कृष्ण कष्ट सह करके किसी विशेष कारण के लिए हुआ है, स्वाभाविक रूप में किसी के लिए नहीं, ऐसे समझना चाहिए। दूसरी बात नारद जी कह रहे हैं, अच्छा अक्रूर को के साथ में गए, बताएंगे अक्रूर भी गए प्रभु, कब गए? कृष्ण के जन्म के बाद में करीब करीब जब कृष्ण 10-11 वर्ष के हो गए, अर्थात उस समय कृष्ण किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए। साधारण लोगों के लिए 12-13 वर्ष की उम्र है। कृष्ण 12-13 वर्ष की उम्र में कैसे हो गए? अगासुर बकासुर ये सबको मारने वाले, और भगवान तो ही है, बल बुद्धि इत्यादि का विकास उसी उम्र में हो गया। कैसी दैत्य भी मारा गया, अब उसके पास में ऐसे कोई जीव नहीं थे जिसको भेज कर तो कृष्ण को मरवा सकते। उसने मंत्रणा की, जो बाकी रह गए कौन, चारू मुक्ति और कालजवन को बुलाया और अपने ससुर को बुलाया, ससुर कौन और अपने अत्यंत निकटतम मित्र शिशुपाल दंत वस्त्र, ये सब अपने बड़े इष्ट मित्रों को बुला करके कहा था कि अब क्या करना चाहिए। प्रिय बंधुओं के साथ ही तो हितैषियों के साथ ही मंत्रणा होती है, मंत्रणा होना ये रात कोई कहे उसको कोई काटे करते करते सारी रात, अंत में निर्णय हुआ कि भाई अब किसी को भेज करके और उसको मरवाना कठिन है, ये तो मार डालेगा, किसी प्रकार से यहां लाना ही उचित है। तो किसी ने कहा, जरासंध जी ने प्रस्ताव किया या किसी और ने, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तुम चले जाओ ब्रजी और वहीं पर तुम मारकर तो चले आओ, प्रस्ताव दिया कि तुम चले जाओ। तो कंस ने कहा मैं नहीं जाता, भाई तुम चले जाओ, जरा देख तो आओ, तो मैं कभी कुछ जा ही नहीं सकता, तो बच्चे क्यों नहीं जाओगे? तो लगाने लगे बतलाए नहीं, किंतु मन में उनको याद आई, खबरदार अब मैं नहीं जा सकता, कान पकड़ता हूं, इसलिए कि मैं एक बार इतना पद के बाद में मैं गया था, चेष्टा की थी उसको मारने के लिए गया और गोकुल में मैं पहुंच गया, गोकुल तक अब पहुंचा था, इतने में कोई गुड़िया मिल गई, गुड़िया मैंने कौन जो माया कौन माती, तो एक बुढ़िया मिल गई, नाम तो जानता नहीं, बुढ़िया मिल गई, तो तू कौन है रे, तू कहां से आ गया, मरा और जो गाली देती है ब्रज की ना, लग आ गया तू मरा, अगल बगल झांकने लगा, बस उसको पकड़ दिया जिसने बड़ी बड़ी हाथियों से फेंक दिया, जिसके डर से जरासंध कांप गया और सब लोगों को बसी भूत कर दिया, ऐसे आदमी का हाथ पकड़ करके मंत्र की भांति और उसको एक पानी में लेकर गुरुवार हाथ नहीं छोड़ा और हाथ से निकल करके भाग भी नहीं सका, कठपुतली की तरह डुबाया और उठा दिया, देखा कि मैं पूरी जरा दांत नहीं, पेट पके हुए, थर-थर कांप रही है, कपड़े गत्ते वैसे ही पुराने पुराने पड़े, अरे बैठ यहाँ बैठ करके गोबर प्रखंडा को लगाओ। इतने में कोई दूसरी आ गई, उसने एक थप्पड़ लगे, कंधा नहीं जाना बनाना जानती, किसी ने लाख से 2-4 लक्षी 2 लक्षी जमा दी, दिन भर जो आया मारे सूचे वैसे ही कर, बड़ी दुर्दशा, किसी ने दया करके कुछ खाने के लिए लो मट्ठा दे दिया खा खिला और बाजरे की रोटी दे दी मोटी सी, किसी प्रकार से ऐसे कुछ दिन चला, ये है ये क्या दशा, यदि मैं भाग करके जाऊं तो मथुरा में पहुंच जाए तो हमको दे करके क्या लोग कहेंगे, जैसे ये कौन है, ये तो है कोई वहां की गुड़िया, कौन से रूप में हमें पहचाने नहीं, और जाए भी नहीं तो जाए तो कहां, बड़ी लज्जी शर्माती और उनकी जारी गलौज और ये मारपीट खाती खुशी कुछ दिन गई, इसके बाद में फिर वही गुड़ जाए फिर करेगा फिर आएगा, तो नहीं कान पकड़ोगे अपने यहाँ, कान पकड़ा था, फिर लेकर के डुबा दिया और निकाला था कंस बन गया। और फिर बताना सीमा में मत प्रवेश करना, बस वहां से बात किया। डर के मारे कभी वो नहीं आता, इसलिए सोचा